بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پیش ہے محمد اور آل محمد پر، اور اپنے عزیز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اور آپ کو اپنے پروگرام میں صبح زندگی میں بہت 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 خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟
اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟
سلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سلام عرض کرتا ہوں اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں، اور بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔
جی، اور خورا ہمارا ہفتے کا موضوع پہلے ناظرین کو پتا چلیں گے ہم۔ بالکل
جی، ہفتے کا موضوع ہمارا چل رہا ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی، ان کی شخصیت کے بارے میں ہم بھی گفتگو کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور امید کریں گے کہ بڑھ چڑھ کے آپ لوگ ساتھ دیں گے۔
بالکل، چونکہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں آپ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جو کسی سے چھپی بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسی راز، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، تو ضرور اپنی رائے مولا کائنات کی، جو آپ بول سکتے زندگی، ان کی شخصیت جو بھی ہے، آپ کو جیسا بھی لگتا ہے، آپ کی زندگی پر مولا کائنات کی شخصیت کے کتنے اثرات جو ہیں وہ پڑ رہے ہیں، جی بالکل، وہ آپ ہمیں ضرور بتائیے۔
بالکل، بڑی خوبصورت بات کی۔ صرف آپ ایک چیز بھول گئی، کیونکہ آپ دو دن نہیں تھیں، اور ہفتے کے دن جو ہے شہادت تھی مولا کائنات کی، تو آپ جو ہے تسلیت بھی پیش کر رہے ہیں۔
بالکل، ہمارا ہفتے کا موضوع بھی اسی سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ عزیز ناظرین کی خدمت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں اپنی طرف سے، سہار اردو ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر تسلیت بولتی ہوں۔
بالکل، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ مولا کی زندگی کو، اب اس پورے ہفتے میں کوشش کریں گے کہ مولا کی زندگی پر نظر ڈال سکیں، اور روشنی ڈالنے اور نظر ڈالنے سے ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آشنائی پیدا کر سکیں مولا کی زندگی کے ساتھ، جان سکیں ان کو، اور پھر ان کی طرز زندگی کو اپنا سکیں۔
بالکل، بہت ہی خوبصورت بات کی، عمل پیرا ہونے کی جو ہے بہت ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ خورم اگر ہم یہ بولیں، برکتوں والی رات بھی تھی کل،
بالکل بے شک شب،
اور ہم یہ جو بالکل چاہیں گے کہ ہم ہمارے جو ناظرین ہیں یہ دعا کریں گے کہ آپ کی تمام عبادات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔
بالکل، ان شاء اللہ قبول ہوئی ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہزار مہینوں سے برتر ہے یہ رات۔ اچھا، ایک چیز اور بھی بتاتے چلوں، تمہارا تصویر مقابلہ جو چل رہا ہے،
بالکل بہت ضروری ہے ناظرین، یہ آپ جان لیجئے کہ تصویری مقابلہ ہمارا چل رہا ہے۔ رمضان کی تصویریں، افطار کی تصویریں، سحری کی تصویریں، آپ کس طرح رمضان مناتے ہیں اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، ہمیں وہ تصویریں ضرور بھیجئے۔
اور بھیجیں گے کس پہ؟
ہمارے جو سائٹ ہے facebook.com/sutmorningshow پہ۔ اور عید کے دن قرآن دازی ہوگی،
بالکل، اور تین خوش نصیب لوگوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔
بالکل، اور خورم زیادہ باتیں نہیں کرتے، ڈائریکٹر صاحبہ جو ہے وہ ناراض ہو رہی ہیں باہر۔ اور یہاں ناظرین وقت ہوا ہے رمضان ہمارے ساتھ، یعنی صبح زندگی کے ساتھ کے سیگمنٹ کا، اور ساتھ مل کر سنتے ہیں 23ویں رمضان کی، 23ویں دن کی دعا سنیں گے، اور پھر اپنے عزیز ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے،
ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام صبح زندگی میں۔ خورم ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی، آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کھانے میں کیا کیا ہے،
یعنی جب کھا رہے ہوتے اس کے اندر، مطلب
کھانے سے پہلے یا وہ کھانے کے دوران آپ سوچتے ہیں اس کھانے میں کیا کیا ہے، میں کتنے فیٹس لے رہا ہوں، کتنی انرجی لے رہا ہوں، کتنے کاربوہائیڈریٹس لے رہا ہوں؟
نہیں، کم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا سوچا
ہو، ڈائریکٹ حملہ ہو جاتا ہے۔
میں جب کھانا بناتا ہوں خاص طور تو میں جو چیز مجھے فریج میں نظر آتی ہے اس کو مکس کر کے اس میں ڈال دیتا ہوں فرائی پین میں، اور جو ہے بہرحال اس میں پھر کچھ پتا ہی نہیں چلتا کہ کیا کھا رہا ہوں میں، تو اس وجہ سے کم دیکھ پاتا ہوں۔
اچھا، میں نے سوال آپ سے اس لیے پوچھا کہ اگر آپ کھانے کے بارے میں کانشیس ہیں،
ٹھیک ہے،
بہت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے، تو آج کا پروگرام آپ دیکھنا مت بھولے گا، کیونکہ آج ایل سی ڈی والے سیگمنٹ میں جو ہے،
ٹھیک ہے،
ہم آج کچھ خاص چیز لے کے آئے ہیں۔
زبردست، یہ تو اچھی بات ہوگی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی طریقہ بتائیں گی کہ کیسے پتا چلایا جا سکتا ہے؟
بالکل بالکل،
زبردست، یہ تو چیز رباب کا سیگمنٹ ہے، مختصر اور مفید کا، ایل سی ڈی کا سیگمنٹ، یہاں پر رباب آپ کو بتائیں گے، اور میرے ساتھ ڈاکٹر ظہیر عباس ہوں گے، اور جلد کے مسائل کے پر ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ موضوع ان کا رہے گا گرمی، اور گرمی سے ہونے والی جلد کی بیماریاں۔
بالکل، اور میرے ساتھ فون لائن پر انشاءاللہ مولانا سید ثنا عباس صاحب ہوں گے انشاءاللہ، اور ہفتے اپنے ہفتے کے موضوع کے بارے میں ہم ان سے گفتگو کریں گے۔
زبردست، ٹھیک ہے جی، آپ کہاں جائیں،
ایک اور خوبصورت دعا ساتھ مل کر سنتے ہیں، اور پھر اپنے عزیز ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام صبح زندگی میں۔ وقت ہوتا چلا ہے ہمارے گفتگو کے سیگمنٹ کا، جہاں خورم بات کریں گے جلد کی مختلف بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹر ظہیر عباس سے۔ جی خورم،
بہت شکریہ رباب جی، بالکل ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں گفتگو کے حصے میں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظہیر عباس موجود ہیں، چلتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسلام عرض کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے۔
وعلیکم السلام،
ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟
آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو،
بالکل فرسٹ کلاس۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے پھر ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، اور
بہت ویلکم
ہمارے ناظرین کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، گرمیاں اور جلد
جی،
ایک بڑا جو ہے زبردست قسم کا ان کا رشتہ تو ہے، کیونکہ جو بہرحال جو ہمیں دکھنے میں چیزیں ملتی ہیں وہ یہ کہ جی رنگ کا کالا ہو جانا، اور دانے اکثر خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ گرمیوں کے کیونکہ پسینہ آتا ہے، اور کریم، اور بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، کچھ کریمیں جو ہیں پسینے کے ساتھ دھل جاتی ہیں، میک اپ دھل جاتا ہے، تو یہ کیا تعلق ہے اس کا کوئی؟
जी बिल्कुल, जिस तरह के आपने कहा कि पसीना जो है वो उसका डायरेक्ट लिंक है बहुत सारी जो हमारी जिल्द की
जिल्द की
बीमारियां
बीमारी।
हैं,
अच्छा
और इनके जो है आप कह लें कि तकरीबन अक्सर जो जिल्द की बीमारियां हैं वो इस जो पसीना है या गर्मी है इसकी वजह से उनके अंदर किसी हद तक जो है सिवियरिटी आती है, यानी उनमें शिद्दत आती है।
ठीक है।
लेकिन यह है कि फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ख़ास तौर पे उनका जो डायरेक्ट लिंक है वो गर्मी के साथ है,
ठीक है।
यानी कहने का मकसद यह है कि कुछ ऐसी बीमारियां जो कि उनकी वजह जो है वो इवन हो सकता है पसीना बहुत ज़्यादा आना और गर्मी बहुत ज़्यादा होना, या फिर गर्मी की वजह से बाज़ूकात जो लिबास यूज़ होता है उसकी वजह से, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके साथ डायरेक्ट लिंक
ठीक
कर
है,
सकते हैं।
सही है।
उनमें से एक जो बीमारी है उसको हम टीना वर्सिकलर कहते हैं। टीना वर्सिकलर एक ऐसी आप कह लें कि फंगल डिजीज़ है, उसमें एक किस्म की फंगल या यीस्ट जिसको कह सकते
जी
हैं उसका रोल होता है हमारे बदन के ऊपर। एक दफ़ा पहले भी हम इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो हमारे बदन के ऊपर नॉर्मल फ्लोरा के तौर पे रह रहे होते हैं,
सही है।
यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं हमारे बदन के ऊपर जो कि हमारे बदन के ऊपर फीड करते हैं,
ठीक है,
यानी
यानी
उन
गजा का जरिया है हम उनके
बिल्कुल,
लिए। ठीक है
लेकिन वो भी हमारे लिए मुफीद हैं,
ठीक है।
यानी ये आप कह लें कि डबल एक किस्म का रिएक्शन है, यानी कुछ उनको एक किस्म की जो है वो फीडिंग मिल रही होती है और उस तरफ हम जो है उनसे कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे होते हैं जो कि हमारी आप कह लें कि दिफाई निज़ाम के लिए बहुत मुफीद है।
फायदेमंद है।
और यहाँ पे बाज़ का तो ऐसा भी पेश आता है कि मुख्तलिफ मसाइल की वजह से
ठीक है
यही नॉर्मल फ्लोरा जो है जो कि नॉर्मली नॉर्मल हालात में हमारे बदन के ऊपर रह रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वही जो हैं वो बीमारी की वजह बन सकते हैं,
अच्छा ठीक
यानी
है।
कुछ ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे हो सकता है कि इन्वॉल्व हों जो कि बायस बनते हैं कि यही जो यीस्ट है जो पहले नॉर्मल हालात में रह रही थी
जरिए
और कोई किसी किस्म की
नुकसान
डिजीज़
नहीं,
नुकसान नहीं दे रहे थे
ठीक
बल्कि
है,
फ़ायदा दे रहे
फायदा दे
थे,
रहे थे। ठीक है, फायदा ले भी
अब
नहीं है, दे भी रहे हैं।
हाँ
ठीक
जी अब जो है वो उनका थोड़ा जो रिलेशन है वो उल्टा हो चुका है और अब वो आपके लिए हो सकता है जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन रहे हैं।
ठीक है
उनमें से जिस तरह के हमने इशारा किया एक बीमारी जो है वो टीना वर्सिकलर है, यहाँ पे जो यीस्ट है या जो आप कह लें कि वही फंगल है
फंगस वगैरह जो हैं। जी
वो पसीने की वजह से ऐसे अफराद जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता
ठीक
है
है,
और ऐसे अफराद जिनके बदन के ऊपर जो है वो फैट बहुत ज़्यादा है, यानी
चर्बी,
चर्बी जो है ऑयली बहुत, उनकी स्किन जो है वो बहुत
ठीक है
ज़्यादा ऑयली है
ठीक है
क्योंकि ये जो फंगस है ऐसी जगह पे रहना पसंद करती है
ठीक है।
जहाँ पे ऑयलीनेस और रतूबत जो है वो ज़्यादा हो।
अच्छा, जैसे बिल्कुल ये फंगस जैसे हमें घर के आसपास भी दिखती है, जहां पर पानी बहुत ज्यादा जमा हो रहा था तो फंगस जो है वो निकल आती है, तो ये
बिल्कुल
उसका भी एक ही
बिल्कुल, ये
ताल्लुक
किसी हद तक वो एक ही
कर
चीज़
सकते
है
हैं इसको
बिल्कुल।
कनेक्ट। ठीक है
तो जिस तरह के आपकी चेहरा है
ठीक है
चेहरे के ऊपर चूंकि ऑयल बहुत ज़्यादा है
जी
या मसलन ऐसे एरिया जैसे बगल है
ठीक है
या हमारा जो सीना है या कमर का हिस्सा है ये ख़ास तौर पे ऊपर वाला जो हिस्सा है
ठीक है। धड़ जो
यानी
है जो
नाफ
ऊपर
से
वाला धड़,
ऊपर ऊपर जो
ठीक
है
है
ये जो एरिया है यहाँ पे चूंकि ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे जो हदूद हैं चर्बी के वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते
ठीक
हैं,
है
और फिर बाज़ूकात रतूबत भी गर्मी की वजह से,
ठीक है
चाहे वो आप ऐसा भी हो सकता है कि एक जो मेन लिंक है वो तो गर्मी के साथ है इसका,
ठीक
लेकिन
है
बाज़ूकात ऐसा भी पेश आता है कि आप जो है वो आपने बाथिंग की है आप नहा के बाहर निकले हैं
ठीक है
और आपने बदन को खुश्क नहीं किया, खुश्क किए बगैर कपड़े पहन लिए हैं,
ठीक है
अब वो कपड़े पहनने की वजह से वो जो रतूबत है वो हमारे बदन के ऊपर रह रही है,
ठीक है,
यानी
मॉइस्चर हो
वो
गया।
बिल्कुल,
ठीक
और
है
उसको आपने ड्राई नहीं किया,
ठीक
अब
है
यही जो रतूबत है वो बायस बन सकती है कि वही जो फंगस आपके बदन के ऊपर नॉर्मल हालात में रह रही थी अब वो अपने आप को ज़्यादा प्रोड्यूस करे, उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाए और अपने आप को आप कह लें कि एक किस्म की बीमारी की वजह अपने आप को बना सकती है।
बना सके। सही
तो यही वजह है कि इन चीज़ों का ख्याल रखना अगर आपने इस बीमारी से बचना है या मुख्तलिफ जो जिल्द की
गर्मी से
बीमारियां
मुतालिक
हैं
बीमारियां जो,
उसके लिए आपको एक तो यह है कि कूलिंग प्लेस पे ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे कूलर काफ़ी हो, पंखा चल रहा हो, रतूबत जो है वो नहीं बने, पसीना नहीं आए,
ठीक है,
और
ऑयली ना
दूसरा
हो।
लिबास जो है वो आपका मुनासिब होना चाहिए। कॉटन के जो कपड़े हैं वो बहुत मुफीद हैं क्योंकि उसके अंदर से जो ट्रांसपोर्टेशन है एयर की ट्रांसपोर्टेशन
हवा की से
वो इजीली जो है वो
होती है,
पॉसिबल होती है,
ठीक है
लेकिन बाकी जितने टाइट कपड़े जिस तरह हैं उनसे बचना चाहिए
ठीक है
क्योंकि टाइट कपड़े खुद जो हैं ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जो जिनको बगल के नीचे पसीना बहुत ज़्यादा आता है आम हालात में, और फिर स्ट्रेस में या फिर गर्मी में तो ये और भी ज़्यादा हो जाता है, यही जो पसीना है वो हो सकता है कि उसको मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करे, और यही जो फंगस है वो बीमारी का बायस बने।
डॉक्टर साहब गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे हम आपके साथ इंशाल्लाह इसी मौजू पर कि गर्मी और जिल्द की बीमारियों का आपस में क्या ताल्लुक है। बहरहाल अभी यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए जाना है रुबाब के पास, देखते हैं रुबाब हमें कहाँ पर लेके जा रही है।
बहुत शुक्रिया खुर्रम। और नाजरीन यहाँ वक्त हुआ है हमारे मज़ेदार हिस्से का यानी खाने पकाने के हिस्से का, और चलते हैं अली वरियानी साहब के पास, देखते हैं आज वो हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। उम्मीद है कि आज सुबह आप सब तंदुरुस्ती सलामत और मुस्कुराहट के साथ उठे हों। आज मैं मौजूद हूँ सैयद अबुल फज़ल अलवी के साथ। कैसे हैं आप?
बस ठीक सर।
ठीक हैं आप? आपके खाने हमेशा लजीज और लाजवाब हमेशा की तरह। तो आज क्या हमें सिखाने वाले हैं
सर? ये स्टीम चिकन है,
स्टीम चिकन
इटालियन फ्लेवर मैं उसको दे रहा हूँ।
अच्छा,
और वेजिटेबल्स भी उसमें हैं, चिकन है।
तो नाजरीन मैं सबसे पहले यहाँ पे ये आपके ईमेल्स के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाह रहा हूँ यहीं से। और जैसे कि कुछ ईमेल्स में मैंने पढ़ा है कि आपने लिखे हैं कि कुछ लोगों को मेरे ख्याल से वेजिटेबल्स के बने हुए खाने के रेसिपीज़ चाहिए थे, वो आज अलवी साहब कष्ट कर रहे हैं। और हम ऑयल फ्री खाने भी आपको सिखाएंगे, क्योंकि आजकल इतना काम मसरूफियत इतना ज़्यादा हो गया है कि मेरे ख्याल से तेल का इस्तेमाल जो है जितना कम कर सकते हैं उतना ही बेहतर है, और तेल का भी बहुत नुकसान है। और कोशिश ये करें कि खानों में जैतून का तेल, क्योंकि बहुत ही नेचुरल है और कोलेस्ट्रॉल भी इसमें मेरे ख्याल से बहुत ही कम है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है आज हम क्या बना रहे थे?
इटालियन चिकन, इटालियन स्टीम चिकन।
इटालियन स्टीम चिकन यानी मुर्गी जो है वो आप स्टीम में,
स्टीम में बना
इटालियन
जायके के साथ
बना। तो इंग्रेडिएंट्स हमें क्या चाहिए?
इंग्रेडिएंट्स जो है हाफ के जी चिकन है,
आधा किलो मुर्गी है बिना हड्डी,
बोनलेस
है, इसमें हड्डी नहीं है।
वेजिटेबल्स है हमारे पास, ब्रोकली है,
ब्रोकली है और
गोभी का फूल है।
यह है इसपे जायका, जितना उनको पसंद है
वो दाल भर डाल दें। कैरेट्स हैं आपके पास,
गाजर,
आलू।
गाजर को इसी तरह काटना है,
इसे भी जो डिजाइन में चाहे काट लें, उसको क्रॉस काट लें, गोल काट लें, जैसा
मेरी तरह काट लें।
और जी हाँ, गार्लिक है, फ्लेवर की
लहसुन है, लहसुन का पेस्ट, ये ताजी लहसुन भी यूज कर सकते हैं।
ताजा, ये ताजा लहसुन है, इसका पेस्ट किया।
अच्छा,
ये ताजा लहसुन का पेस्ट।
नाजरीन इसको जो है आप ताजा भी यूज कर सकते
हैं। और नमक भी है जो टेस्ट के बारे
में, आपके यहाँ पे नमक मुझे क्यों पता नहीं,
शुगर कैसा दिख रहा है,
चीनी जैसा दिख रहा है,
नहीं सॉल्ट है सर वो। फिर ये भी है, मैं इटालियन सॉस जो बनाया हूँ, इटालियन सॉस के अंदर मैं जो यूज किया हूँ।
ये आपने पहले से बनाया?
जी हाँ, पहले से
बनाया हूँ। नहीं सिखाने
से ऐसी बात नहीं, पूरा इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ।
तो इसको कैसे बनाना है?
जी हाँ, ये देखिए, इसमें हनी है,
शहद,
जी हाँ शहद है, और जाफरान है,
जाफरान,
और इसमें ब्लैक पेपर मैं थोड़ा बहुत डाला हूँ,
काली मिर्च
और खुंजन, नहीं है सीसम सीड होता है, ये सीसम सीड, जी हाँ तिल, जी हाँ तिल,
तिल इसमें ऐड किया, बस
ज़ाफ़रान का फ्लेवर,
हाँ ज़ाफ़रान का बुआर है। तो ये जो है थिकनेस है, ये
शायद की वजह से, क्यों बोल के चिकन को वो मैरिनेट करने में मदद करेगा ये।
अच्छा,
ये भी थोड़ा
खट्टा मीठा बना देगा।
अच्छा, और वेजी इसके अंदर जो है वेजिटेबल्स, सॉरी सर, वेजिटेबल्स में मैं ये पार्सली डाल रहा हूँ,
पार्सली
जी हाँ, और वो
और
थोड़ा योगर्ट भी है,
दही, दही क्रीमी यूज कर रहे
हैं तो बेटर है सर।
और हमें
अभी जो है मैरिनेशन करना है अपने को, और इसमें दो चम्मच दही डाल दें सर।
मैं इसमें दो चम्मच लाल मिर्च नहीं नजर आ
रहा है इसमें। ये क्यों इटालियन ज्यादा,
हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो नाराज हो गए थे पिछले प्रोग्राम में कि आप मिर्च क्यों डाल रहे हैं। मैंने कहा कि छोरे में बाद में बताऊंगा।
अब ये भी तो थोड़ा मैं आपको पार्सली डाल दे रहा हूँ, बहरहाल वो जो,
अच्छा इसको कैंची के साथ काटना,
बस बारीक काट लें तो बेटर।
अच्छा, ये कैंची के साथ, हौसले के साथ आप काटें, खुशबू मेरे नाक के अंदर जा रहे हैं। अच्छा जी, और क्या डालना चाहिए?
उसमें थोड़ा गार्लिक डाल देंगे,
लहसुन
दो चम्मच, आप लहसुन डाल दें,
दो चम्मच चाय की चम्मच, चाय की चम्मच, दो लहसुन,
एक
दो
दो जी हाँ सर,
और
नमक भी थोड़ा जायके के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से,
जायके के हिसाब से स्पून अगर मुझे एक दें तो ये कितने चम्मच डालूं स्पून?
थोड़ा बस टेस्ट के हिसाब, बस बस बस।
चलो आधा चम्मच चाय का चम्मच
नमक डाल दें।
चलो जी नमक हो गया, नमक भी कम यूज़ करें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो नमक कम यूज़ करें, कोशिश करें। तो ये इटालियन सॉस,
ये इटालियन सॉस जो मैं बनाया हूँ, ज़ाफ़रान है, असल है, थोड़ा उसमें
मिर्च नहीं है इसमें,
नहीं काली मिर्च है सर, इसमें लाल मिर्च नहीं है।
अच्छा ये
जी हाँ,
मिर्च काफ़ी है। चलो जी
ये भी आप इटालियन सॉस दो बड़े चम्मच डाल दें इसमें।
वाह जी वाह, क्या पेस्ट ये। चलो जी
जब आप इसको मिक्स कर रहे हैं तो इसका फिर अभी जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तो आप इसका वेजिटेबल्स,
ये ज़ाफ़रान का खुशबू आ रहा है।
जी हाँ ज़ाफ़रान का खुशबू सर।
वाह जी वाह,
तो ये वेजिटेबल्स भी मैं एक जगह सब मिला देता हूँ वेजिटेबल्स को।
कभी कभी दिल करता है कुकिंग के समय कि मैं उसी टाइम खा लूँ। तो ये नाज़रीन देखें कितनी ज़ाफ़रान की जो इफ़ेक्ट है, यानी मैं आपने ज़ाफ़रान का फूल देखा है?
जी हाँ ज़ाफ़रान का फूल,
कितनी ये खूबसूरत है, यानी कि अल्लाह ताला ने पता है ये कैसे बनाया
है।
कलर देखें कितनी खूबसूरत है ज़ाफ़रान की कलर, और खुशबू,
खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है।
जो बू है वो खाने को, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप गोश्त में ज़ाफ़रान ऐड करें तो उसका जो टेस्ट है बिल्कुल ही बदल जाता है।
चलो जी तो इसमें थोड़ा बहुत ये यार दही डाल दें सर, दो चार तीन चम्मच डाल दें, वेजिटेबल ज़्यादा है,
दो
और ये तीसरा
तीन
जी, थोड़ा दो चम्मच अभी गार्लिक डाल दें सर, गार्लिक पेस्ट,
लहसुन
जी हाँ
कितने,
दो चम्मच,
एक
एक दो,
चलो जी
दो चम्मच भी सीजम
सीड, यहाँ से चम्मच उठाऊँ तो तिल,
तिल दो चम्मच,
एक
एक
दो, ये बहुत इनके तिल का खवास भी बहुत ज़्यादा है,
ज़्यादा
है जी हाँ, सेहत के लिए कहते हैं कि बहुत मुफीद है, खास करके बच्चों के लिए।
ये भी आप इसका जो इसमें भी सॉस डाल दिया।
चलो जी पूरा का पूरा ज़ाफ़रान, यहाँ पे ज़ाफ़रान का बू पूरा फैल गया है। यहाँ पे
सॉल्ट भी डाल दें सर, एक थोड़ा आधा चम्मच सॉल्ट भी डाल दें इसके अंदर।
जी सॉल्ट भी डाल रहा हूँ। चलो जी नमक
जी, थोड़ा विनीगर इसमें डाल देंगे,
सिरका
जी हाँ थोड़ा सिरका आप डालें, मैं जब तक थोड़ा इसका पार्सली भी,
ये खाने का चम्मच तो नहीं सूप का चम्मच कह सकते,
दो डाल दें आप, दो सूप।
चलो जी ये इसको खट्टा बना देगा मेरे
ख्याल से, स्वीट सावर लाइट टेस्टी,
ये एक ये दो,
दो।
चलो जी ये सिरका और
पार्सली जी हाँ
कहते हैं,
इसको भी टॉस कर लें कि बराली भी मिक्स कर दें इसके साथ।
अच्छा जी ये भी इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ज़ाफ़रान
का कलर इसमें आ रहा है।
वाह जी वाह क्या बन रहा है यहाँ पे आप नाज़रीन, मैं आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे क्या सह रहा हूँ ये आपको पता नहीं है।
इंशाल्लाह तैयार हो जाए फिर साथ में खाएंगे इसे।
तैयार होने तक अगर मैं जिंदा रहा तो। चलो जी
ये स्टीमर भी आपका रेडी है,
अस्पताल पास ही है ना यहाँ हो सकता है खाने से पहले मैं बेहोश हो जाऊँ।
खुदा ना करे, खुदा ना करे। मैं अभी इस वक्त ये वेजिटेबल्स को डाल दे रहा हूँ इसमें।
अच्छा स्टीम,
स्टीमर, स्टीमर
हमने पिछले प्रोग्राम में भी और अगले प्रोग्रामों में भी आपको बताते रहेंगे कि ये आप जिन लोगों के पास स्टीम कुकर नहीं है, वो किसी ने मुझे कहा कि इंडिया में इडली के नाम से एक मशीन है उन उसमें बना सकते हैं, वरना आप एक बड़े बर्तन में पानी डालकर एक दूसरा बर्तन अंदर डाल के ये सारी चीज़ें उनके उसके अंदर डाल के स्टीम कुक कर सकते हैं। तो ये है हमारा इटालियन
स्टीम चिकन,
स्टीम
चिकन सर,
चिकन इटालियन स्टीम चिकन। बोंजोर्नो नाज़रीन, इटालियन के ज़बान में अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरे ख्याल से पक चुका है, 20 मिनट हो गए, 20 मिनट काफी है,
20 मिनट काफी है सर, इटालियन स्टीम चिकन है, 20 मिनट काफी है, सब चीज उसका रेडी हो जाएगा
जी।
अभी हम इसको सर्व कर देंगे
जी, ये मैं आपको देता हूँ।
ओके सर इसको सर पकड़ लूं।
डिजाइन करना बहुत जरूरी चीज है खाने में,
हां बस डिजाइनिंग,
क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप खाने को डिजाइन करें तो मेरे ख्याल से अगर मैं ऐसा हूँ अगर खाना डिज़ाइन शुदा हो तो मैं अगर एक प्लेट खाता हूँ नॉर्मली तो दो प्लेट खाऊंगा डिज़ाइन की वजह से।
सही बात है।
अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मेहमान या आपके जो खाने वाले हैं वो अगर आप ये चाहते हैं कि वो ना खाएं तो आप वैसे ही बर्तन के साथ जो है टेबल के ऊपर रखें, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इश्क के साथ और दिल के साथ जो है खाने को सर्व करें तो ज़रूर डिज़ाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोग्राम में कि हमेशा टेबल के पास एक फूल या एक कैंडल जो है वो जला के रखें, ये भी मेरे ख्याल से खाने में बहुत हेल्प करता है इश्तहा को।
पर उसके बाद तिल डाल दें क्या उसका?
जी वाह जी वाह, दिखने में
थोड़ा
पेंटिंग की तरह है ये।
बस कुकिंग इज आर्ट,
ये बिल्कुल पेंटिंग की तरह है।
खुशबू भी बहुत है इसमें,
ज़ाफ़रान की खुशबू, इटालियन हर्ब्स की खुशबू।
नाज़रीन जी तो कर रहा है वैसे ही खा लो तो करे क्या, तो
इंतज़ार।
चलो हम सबको इंतज़ार करना चाहिए। अलविदा साहब बहुत बहुत शुक्रिया,
प्लेजर,
देखने में बहुत लजीज है। अब नाज़रीन को मैं भेजता हूँ ब्रेक के लिए और हम जाएंगे टेस्ट करने के लिए तो नाज़रीन मुझे और अलविदा साहब को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक न मुलाकात होगी। मुझे अली वरियानी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
जी नाज़रीन दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। वरियानी साहब के साथ आपने स्टीम इटालियन चिकन बनाना सीखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इफ्तार में इस खाने को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ चलते हैं खुर्रम के पास ताकि अपनी गुफ्तगू के सेगमेंट को जारी रख सके।
जी खुर्रम, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि मुख्तलिफ ग़ज़ाएँ ट्राई करनी चाहिए, इससे जो है बंदा का जो है वो उस पर क्या कहते हैं नफ्सियात पर एक मुस्बत असर पड़ता है। बहरहाल ज़्यादा मैं नफ्सियात की बात नहीं करूँगा, हम चलेंगे जिल्द के मसाइल की तरफ। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ज़हीर बस। डॉक्टर साहब आपने बता दिया कि असरात क्या होते हैं और क्या वजूहत हैं, पसीना है, ऑयल है, तंग कपड़े हैं, गर्मी और ये सारी चीज़ें, गीले कपड़े पहन लेना, को खास बीमारियों की तरफ इशारा करेंगे डॉक्टर साहब।
जी एक तो जिस तरह हमने कहा कि यही जो यीस्ट है ये जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है और ये ग्रोथ इसकी ज़्यादा होती है उस वक़्त ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, यानी वही फॉर्म जो पहले नॉर्मल थी अब एबनॉर्मल हो चुकी है।
एबनॉर्मल तादाद के लिहाज से डॉक्टर साहब या
ना उसकी तब्दीली की वजह से, और इस तब्दीली के नतीजे में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी जिल्द जो है वो ब्लैक है,
ठीक है,
यानी बहुत डार्क है, उसके ऊपर वाइट किस्म के पैचेस बनेंगे, यानी आप कह लें कि छोटे छोटे कॉइन शेप के धब्बे जो है वो बनेंगे बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पे, वही हिस्से जिस तरह के हमने कहा जहाँ पे ऑयलीनेस जो है वो ज़्यादा है।
अच्छा।
जिस तरह के चेहरा है, चेहरे के साइड पे ख़ास तौर पे, गर्दन के ऊपर, हमारे शोल्डर्स के ऊपर, हमारा जो ट्रंक है इस एरिया में, हो सकता है आगे पीछे दोनों तरफ बिल्कुल
ठीक,
लेकिन हो सकता है ये इवन नीज तक जो है ये इसके ये जो धब्बे हैं बिल्कुल वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आम तौर पे जो ज़्यादा रूटीन में चीज़ देखने में आती है वो यही है कि सिर्फ चेहरे के ऊपर, गर्दन और जो हमारा ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे ज़्यादा नज़र आते हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी स्किन जो है वो वाइटिश है, यानी थोड़ी लाइट है और सफ़ेद है, उस सूरत
में रंग है बहुत काला नहीं है बहुत सफ़ेद है,
उस सूरत में हो सकता है कि उसके जो धब्बे हैं वो वाइटिश कलर के हों, यानी आप कह लें कि ब्राउन टू वाइट कलर इस तरह
भूरे और सफेद के दरमियान
बिल्कुल, लेकिन मोर नियर टू आप कह लें कि वाइट जो है
तकरीबन सफेद हों
बिल्कुल, जिस तरह के आप कह लें कि एक बीमारी है बर्स जिसको कहते हैं, विटिलाइगो भी कहते हैं, तकरीबन बाज़ुकात उसके साथ भी इसको मिक्स किया जा सकता है, यानी ऐसे पेशेंट्स जो कि हो सकता है कि उनके अंदर जो है वो आप कह लें कि उनके पास इत्तलात कम है, या हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड हो किसी ऐसे शख्स के पास जिसको बर्स वगैरह हो,
ठीक है,
उस सूरत में हो सकता है कि वो डर जाए कि मुझे कहीं विटिलाइगो जो है वो नहीं हो चुकी, लेकिन इसके जो पैचेस हैं इस बीमारी ये जो फंगस है इसकी वजह से जो पैचेस बनते हैं वो आमतौर पर काइन की शेप में इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते,
सिक्के के साइज़
बिल्कुल
ठीक है,
और बाज़ुकात इवन बड़े भी हो सकते हैं लेकिन आमतौर पर वही सिक्के की शक्ल में ही बाकी रहते हैं। और
गोल होंगे डॉक्टर साहब?
नहीं ऐसे नहीं है बिल्कुल गोल होंगे, मुख्तलिफ शेप में,
ठीक
تقریباً اس کے سائز، یہ جو سکے کی بات کر رہے ہیں یہ صرف سائز کے حوالے سے، تقریباً اس کا سائز جو ہے وہ اس حد تک ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مختلف افراد میں اس کی جو آپ کہہ لیں کہ سمپٹمز ہیں، جو علائم ہیں، وہ مختلف ہو سکتے ہیں مختلف افراد میں. اگر اس کا جو جس طرح کہ ہم نے کہا کہ کلر جو ہے وہ ڈارک ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ اس کے جو دھبے ہیں وہ تقریباً وائٹ ہوں، براؤن ہوں. اور کوئی ایسا شخص جو کہ جس کی جلد سفید ہے، وہاں پہ ایون جو ہے یہاں پہ بلیک ٹو وائٹ، یعنی تھوڑا مکس کلر کا جو ہے وہ بن سکتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایون ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھورے بھی ہیں، بلیک ٹائپ بھی ہیں اور سفید بھی ہیں. تینوں قسم کے جو پیچز ہیں وہ وہاں پہ آپ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں نظر آئیں. لیکن اب اس کو کیسے جو ہے وہ باقی مختلف بیماریوں سے ڈیفرینشیٹ یا اس کو الگ کیا جائے.
اس پہ بات کریں گے کہ کیسے جو ہے دوسری بیماریوں سے اس کو جدا کیا جا سکتا ہے، علیحدہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر ہم جانے رباب کے پاس، اور اس کے بعد گفتگو آپ کے ساتھ بڑھائیں گے. جی رباب
جی، بہت شکریہ خورم، بہت ہی مفید گفتگو چل رہی ہے آپ کی. امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی گفتگو پسند آ رہی ہوگی. لیکن ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک کلپ دیکھنے کا، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، آپ نے ایک نعت ملاحظہ فرمایا، امید کرتے ہیں آپ کو یہ نعت پسند آئی ہوگی. وقت ہوا ہے ہمارے گفتگو کے حصے کا، جہاں ڈاکٹر ظہیر عباس ہم سے بات کر رہے ہیں گرمی اور جلد کی بیماریاں. فوراً چلتے ہیں خورم کے پاس.
بہت شکریہ رباب جی. ڈاکٹر ظہیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ کیسے دوسری بیماریوں سے اس کو جدا کیا جا سکتا ہے، علیحدہ رکھ دیا جا سکتا ہے.
جس طرح کہ ہم نے کہا، وہی برس یا وٹیلائیگو ہے، چونکہ وائٹ قسم کے پیچز بھی بن سکتے ہیں. اس بیماری میں یہ جو فنگس کی وجہ سے ہوئی ہے، جس کو ٹینا ورسیکلر کہتے ہیں، یا گرمی کی وجہ سے، اور بالکل یہ ایک عام بیماری ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 50% جو افراد ہیں، پاپولیشن جو ہے وہ دنیا کی، وہ کسی نہ کسی وقت میں اس میں انوالو رہتی ہیں. یعنی بہت ہی کامن ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ مثلا فار ایگزامپل 60 ایئر کی اس کی ایج ہے، ایک دفعہ اس کو زندگی میں یہ مسئلہ جو ہے وہ ضرور پیش آیا ہوگا. یعنی اس حد تک جو ہے وہ کامن ہے. اور ہو سکتا ہے اس نے اس کو نگلیکٹ کیا ہو، کیونکہ بیماری ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کو ڈسٹرب کرے. صرف ظاہری طور پہ جو ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ مسئلہ جو ہے ہو سکتا ہے، اہم ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں خارش بھی ایڈ ہو سکتی ہے، بہت ہی مختصر سی خارش بھی ہو سکتی ہے. اور اس کا جو فرق ہے وہ برس سے، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بالکل آپ کہہ لیں پارٹیکلز جس طرح ہوتے ہیں، بہت ہی ذرات، اس طرح کے وائٹ قسم کے، جس طرح پاؤڈر ہوتا ہے، اسی طرح کے ذرات جو ہیں اس کے اوپر، پیچز کے اوپر نظر آئیں گے.
یعنی دانوں کی شکل
نہیں، نہیں بالکل ذرات، جس طرح آپ کہہ لیں کہ پاؤڈر جو ہے وہ ایک پیچ کے اوپر، بالکل چھوٹے چھوٹے بالکل سفید قسم کے، آپ کہہ لیں کہ سکیلز اس کو ہم کہتے ہیں. یعنی جس طرح آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں ڈینڈرف ہوتی ہے، جس طرح ہمارے بالوں کے اوپر یا بعض اوقات آئی برو کے اوپر ہوتی ہے، اسی طرح کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں. لیکن ان کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ خود اس کو ڈائگنوز نہیں کر پائیں اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، لیکن اکثر جو ہے وہ اگر غور کریں تو یہ آپ خود ہی گھر کے اندر ہی اس کو جو ہے ڈائگنوز کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور ڈائیگنوسس کے بعد اب اس سے یہ ہے کہ اس بیماری کو کیسے بچا جا سکتا ہے. ایک تو بچنے کی وجہ ہم نے بتائی کہ وہی جو اس کے کازنگ فیکٹرز ہیں، جو اس کی وجہ بنتے ہیں، ان سے بچا جائے. جس طرح کی گرمی ہے، جو ٹائٹ کلوتھس ہیں ان سے بچا جائے، یا پسینے سے بچا جائے، رطوبت جو ہے اس کو کم کیا جائے، یا جو مختلف قسم کی آپ جو ہے وہ موئسچرائزنگ چیزیں یوز کرتے ہیں جو کہ اسکن کو اور بھی آئلی کر سکتی ہیں، ان سے جو ہے اوائڈ کریں. یہ تو ہو گئی اس کے ایسی چیزیں جن سے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. اب اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے، اگر آپ کو ایسے جو لیجنز ہیں وہ بن چکے ہیں آپ کی اسکن کے اوپر،
دھبے،
بالکل دھبے بن چکے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو جو ہے مختلف قسم کے اینٹی فنگل شیمپو ملتے ہیں، ان کا یوز کر سکتے ہیں. اینٹی فنگل شیمپو جو ہے اس کے یوز کا جو ہے آپ کہہ لیں پراپر جو ہے اس کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا استعمال باقی جو روٹین والے شیمپو ہیں ان سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. فرق یہ ہے اس میں کہ آپ جب شیمپو لگائیں گے، آپ نے پورے بدن کے اوپر، یعنی جو نیز ہیں یہاں تک، پورے بدن کے اوپر آپ نے اس کو لگانا ہے. آپ جب نہانے جائیں گے تو اس وقت گردن سے لے کر جہاں جہاں بھی آپ کے پیچز ہیں، سارا وہ ایریا جو ہے اس کے اوپر لگائیں.
ٹھیک ہے.
اور 10 منٹس تک جو ہے یہ آپ کے بدن کے اوپر رہے.
ٹھیک ہے.
اس کے بعد آپ اس کو واش کریں.
ٹھیک ہے.
یعنی عام طور پہ عام جو ہم شیمپو یوز کرتے ہیں وہ ود ان 2-3 منٹس جو ہے ہم اس کو واش کر لیتے ہیں.
بالکل.
لیکن یہاں پہ اگر 2-3 منٹ کے بعد آپ واش کریں گے تو شیمپو جو ہے وہ اپنا اثر نہیں دکھائے گا.
ٹھیک ہے.
یہی وجہ ہے کہ 10 منٹس تک اس کا ہمارے بدن کے اوپر رہنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
اس کو آپ یوز کریں گے تو عام طور پہ تقریباً آپ کہہ لیں 90-95% جو ہے یہ لیجن جو ہے تقریباً ود ان 1 ویک یا 10 دن کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں.
صحیح.
لیکن اگر جو ہے اس کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہے، اور عام طور پہ اس کا جو شیمپو کا استعمال ہے وہ ہفتے میں 2 یا 3 بار ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد اگر پھر بھی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے آپ کو اینٹی فنگل کیپسول جو ہیں وہ اس یوز کرنے پڑیں.
بالکل.
اس صورت میں وہ جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس ظاہرہ جانا پڑے گا کیونکہ وہ فارمیسی یا فارماسسٹ جو ہے اس سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. تو بہرحال اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ شیمپو, اس کے بعد آپ اینٹی فنگل کیپسول یوز کریں گے. لیکن ایک جو اور ذریعہ ہے اس کے بچنے کا, کیونکہ یہ بیماری جو ہے عام طور پہ چونکہ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ ہمارے بدن کے اوپر رہ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان فیوچر میں کچھ عرصے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ زیادہ گرمی میں گئے ہیں یا آپ کے بدن کے اوپر رطوبت زیادہ ہو چکی ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے پھر سے یہ اپنے آپ کو دکھائے. یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ دوبارہ سے آتی ہے,
آ سکتی ہے
1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد دوبارہ آ سکتی ہے. اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے, یعنی اس کی جو ریکرنس ہے یا اس کی پھر سے آنے کی جو چیز ہے اس کو روکنے کے لیے آپ یہی جو شیمپو ہے اس کو ٹریٹمنٹ کے مرحلے کے بعد 1 مہینے جو ہے اس کا استعمال کر لیں کیونکہ یہ بیماری جو ہے وہ تقریباً 1 مہینہ لگ سکتا ہے کہ دوبارہ سے واپس آئے. تو اس سے بچنے کے لیے کہ آپ اس کو پوری طرح جو ہے وہ روکے رکھیں, 1 مہینے جو ہے اس شیمپو کا, اینٹی فنگل شیمپو جو ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. پاکستان اور انڈیا میں یہاں پہ ایک شیمپو ملتا ہے نیو رال کہتے ہیں اس کو, اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ. اور اس میں عام طور پہ کیٹوکونازول 2% جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے اگر اس نام سے نہیں ہے تو مختلف جو نیمز ہیں برانڈز ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اگر فارماسسٹ سے رجوع کریں اس کو اینٹی فنگل شیمپو جو ہے اس نام سے اگر کہیں تو آپ کو یہ مل سکتا ہے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ گفتگو کے ساتھ آپ کے, آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ ابھی چلیں گے رباب کے پاس, دیکھتے ہیں رباب ہمارے ناظرین کے لیے کیا لے کے آئیں. جی رباب
بہت شکریہ خورم. اور جیسا میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو ناظرین بتایا تھا کہ اگر آپ کو کھانے پینے میں ذرا سا یہ پریشانی رہتی کہ میں کیا کھا رہا ہوں, میرے کھانے میں کیا چیز موجود ہے, تو آپ یہ ڈیوائس جو ہے, گئی تصویر, جی پتا نہیں خیر تصویر نہیں کھل رہی ناظرین, اگر آپ اس ڈیوائس کا استعمال کریں تو آپ جو ہے اپنے کھانے پینے میں کن کن چیزوں کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ جان سکیں گے. یہ کوئی یو ایس بی نہیں ہے, اس ڈیوائس کا نام ہے فوڈ مولیکیول سینسر. اس ڈیوائس کا کام یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے کھانے کے اوپر رکھتے ہیں, اور اگر یہ تصویر, جی ہاں, اپنے کھانے کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ آپ کے کھانے میں فوراً آپ کو بتاتی ہے کہ اس میں کھانے میں کیا کیا موجود ہے, کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز اور باقی تمام چیزوں کے بارے میں یہ آپ کو جو ہے وہ جانکاری دیتی ہے. اس ڈیوائس کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کے موبائل سے بلوٹوتھ کے ذریعے جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکتی ہے, اور پھر آپ کے موبائل کے صفحے کے اوپر یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے کھانے میں کیا کیا چیز ہے, کتنی انرجی, کتنے فیٹس, اور آپ کیا کھا رہے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں کیا نہیں کھا رہا ہوں, تو اس ڈیوائس کا اپنے کھانے میں ضرور استعمال کیجیے, یعنی کھانے کے اوپر اس کا استعمال کیجیے. لیتے ہیں یہاں ایک خوبصورت سا وقفہ, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, میٹھی داری اور میٹھی میں آپ چینی کا استعمال تو ضرور کریں گے, شیر خورمہ ہو گیا اور بہت سے میٹھے کھانے, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ چینی جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. کہا جاتا ہے بچوں میں چینی کا استعمال بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی, انزائٹی لے آتی ہے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے گردے کی پتھری کی بھی شکایت چینی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے, اور استھما کی بھی شکایت ہو سکتی ہے. کہا جاتا ہے کہ چینی کا استعمال جو ہے وہ آپ کے پھٹوں کو جو ہے بہت سخت کر دیتا ہے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں یا ورزش کرنے کے مسائل میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے دقت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے چینی کے استعمال سے آپ کے جسم میں کیلشیم جو ہے وہ کم جذب ہوتا ہے. کہا جاتا ہے دانت بھی خراب ہو سکتے ہیں چینی کے استعمال سے, بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول کی شکایت بھی چینی کی وجہ سے رہتی ہے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جو بزرگ افراد ہیں وہ چینی کا زیادہ استعمال کریں تو انہیں ڈپریشن کی بھی شکایت ہو سکتی ہے, گیسٹرک کینسر اور پھیپھڑوں کے کینسر کی بھی شکایت چینی کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو چینی کا کم استعمال کیجیے, میٹھی عید ہے لیکن آپ اس کو قدرتی طور پر میٹھا بنا سکتے ہیں. چلتے ہیں خورم کی طرف. جی خورم
بہت شکریہ, آج جو ہے بہرحال آپ نے ایل سی ڈی کے حصے میں بڑی زبردست باتوں طرف اشارہ کیا, اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین یہ ڈیوائس خریدیں گے اور استعمال کریں گے اس کا. ڈاکٹر صاحب آخری حصہ پہنچ گیا ہمارے گفتگو کا, اور بہرحال آپ نے جو ہے ان دھبوں کے بارے میں تفصیل بتائی اور اس کا علاج بھی بتایا. ایک مسئلہ درمیان میں ڈاکٹر صاحب رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پسینے کا مسئلہ.
جی
یہ بڑا ایک سنجیدہ قسم کا مسئلہ ہے, بڑا تنگ کرتا ہے لوگوں کو, عجیب و غریب قسم کی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے مشکلات کا سامنا رہتا ہے, کیا کیا جائے اس کے بارے میں؟
پسینہ جو ہے ایک تو اس کا یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا یہ صرف گرمی کی وجہ سے پسینہ ہو رہا ہے یا اس گرمی کے بغیر بھی آپ کو پسینہ آ رہا ہے.
اچھا.
یعنی ایسا بھی پیش آ سکتا ہے کہ ایسے سیزن میں جو کہ بالکل کولنگ, یعنی آپ کو ایون جو ہے سردیوں میں पसीना आ रहा है, या स्ट्रेस की वजह से आपके हथेली के ऊपर, आपके पाँव के ऊपर, आपके बगल के नीचे यहाँ पे अगर इस तरह का मसला पेश आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये पसीना आम रूटीन वाला पसीना नहीं है।
ठीक है,
इसको एक दूसरे से अलग करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है,
क्योंकि अगर जो है वो गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हमारे जो पसीने के हुदूद हैं हमारे जिल्द के अंदर, उनका काम ये है कि आपको किसी न किसी हद तक जो है वो अगर गर्मी आ रही है तो बदन को गर्मी से बचाने के लिए इस पसीने का जो आप कह लें कि पसीना आता है, ताकि थोड़ी बहुत कूलिंग हो जाए और हमारा बदन का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन नॉर्मल मेंटेन रहे।
ठीक है,
यही वजह है कि इनका काम जो है वो एक किस्म का एक नॉर्मल रूटीन है और एक नॉर्मल रिस्पांस है गर्मी की वजह से। लेकिन अगर गर्मी के बगैर ऐसा मसला पेश आ रहा है तो उस सूरत में आप कह लें कि मोर देन 10 ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी जो इस पसीने के पीछे हो सकती हैं।
ठीक है,
तो लेकिन अगर ऐसा है कि आपकी फैमिली में किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अबू या अम्मी या आपके बहन या भाई किसी एक को पसीने का मसला है, यानी गर्मी वाला नहीं, दूसरे वाले जो रूटीन के गर्मी की वजह से, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उस सूरत में ये जो पसीना है इस हो सकता है कि ये फैमिलियल हो।
ठीक है,
यानी इसका हो सकता है कि किसी ख़ास बीमारी के साथ लिंक नहीं हो, और ये पसीना आमतौर पर रात को जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ड्राई हो जाता है, सिर्फ दिन के वक्त रहता है, और आमतौर पे 25 साल की उम्र से पहले पहले शुरू हो जाता है।
ठीक है,
लेकिन ऐसा पसीना जो 25 साल के बाद शुरू हुआ है,
ठीक है,
और एक ही दम से, पहले आपको नॉर्मल रूटीन वाला पसीना आता था, अब जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है,
अच्छा,
तो इस सूरत में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई बीमारी इसके पीछे है।
ठीक है,
उसमें हो सकता है टीबी हो। टीबी एक हमारी कंट्रीज़ में जो है वो एक कॉमन डिजीज़ है।
बिल्कुल,
लेकिन टीबी में जो है इसकी और भी अलामतें हैं, जिसमें फीवर हो सकता है,
ठीक है,
वज़न जो है वो कम हो सकता है,
ठीक है,
लेकिन जो पसीना है वो भी बहुत ज़्यादा उसकी एक कॉमन अलामत है।
ठीक है,
तो इसके अलावा कुछ ऐसे आप कह लें कि कैंसर्स हैं वो इसके पीछे हो सकते हैं, और हमारे जो लीवर की बीमारियाँ हैं, गुर्दे की और लीवर बीमारियां जो हैं ये भी इसके पीछे हो सकती हैं, हमारे खून की कुछ ऐसी बीमारियां हैं वो इसके पीछे हो सकती हैं, यानी अनीमिया, इवन जो कम खूनी वगैरह है उसकी वजह से ये मसला पेश आ सकता है। तो आप कह लें कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इसके पीछे हो सकती हैं, चाहे वो ऐसी बीमारियाँ जो कि इन्फेक्शन हों, चाहे वो ऐसी बीमारियाँ जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फ्लेमेशन का बायस बन रही हों, और उसके पीछे इवन जो है वो कैंसर का रोल भी हो सकता है।
ठीक है,
लेकिन आमतौर पे इसके पीछे जो कैंसर होता है वो खून का कैंसर है।
अच्छा,
जो कि एक कह रहे हैं कि बहुत ही डेंजरस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है आपको जब भी पसीना आए आप घबरा जाएं, ये सिर्फ उस सूरत में है जब आपको रूटीन से हट के पसीना आ रहा है
और 25 साल
और 25 साल के बाद जो है वो आपको आ रहा है, क्योंकि 25 साल से पहले वाला और अगर आपकी फैमिली के अंदर किसी एक और शख्स को भी है तो इस सूरत में ये फैमिलियल है, और इसको सिर्फ जो है आप मुख्तलिफ किस्म के ड्यूडेंट जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बाजार में अवेलेबल है, और आमतौर पर इनके अंदर जो है वो एक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आप कह लें कि जो हुदूद हैं उनकी जो नालियां होती हैं उनको बंद करते हैं,
पसीने
की जो बिल्कुल यही जो पसीने की नालियां इनको बंद करती हैं, और यही वजह है कि ऐसा ऐसा जो है वो पसीना रुक जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर इसके बावजूद ठीक नहीं हो तो मुख्तलिफ किस्म की और भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें जो है बोटॉक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन यह कि गर्मी वाला जो पसीना है उससे अगर आपको अवॉइड करना है तो उसका जो है वो बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि आप रात के वक्त जो है वो ड्यूडरेंट का इस्तेमाल करें, ताकि वो हमारे जो हुदूद हैं उनके ऊपर रात के चूँकि पसीना नहीं है उस वक्त असर करें, और दिन को आप जो है वो तकरीबन कंफर्टेबल फील करें।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, माजरा के साथ वक्त हमारे पास बहुत कम था, बहरहाल जल्दी जल्दी आपको बहुत सी चीज़ें बतानी पड़ी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल नाज़रीन आप लोगों ने डॉक्टर ज़हीर अब्बास की गुफ्तगू सुनी, बहरहाल मुख्तलिफ ज़ावियों से हमने पसीने और गर्मी का जो मसाइल हैं उस पर बहरहाल रोशनी डाली, उम्मीद है कि आप लोगों के लिए
जो
हम बगल में मुख्तलिफ चम की जो
क्या होते
हैं जी बिल्कुल लगाते हैं कि पसीना ना आए, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि रात को लगा के सोएं
जी।
और ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि हम लोग जो सुबह उठ के ही लगाते हैं,
कहीं
नहाने
जाना
के
हो
बाद
तो
जो
फौरन
बिल्कुल
बस स्प्रे
लगा
ले
लिया,
हाथ में ये
बिल्कुल
लगा
स्प्रे
दिया
लगा
हमने
लिया,
बिल्कुल।
और या
लेकिन ये बहुत अहम नुकता है जो हम खवातीन और मखसूसन जो
बिल्कुल
मर्द हजरात उनको भी इस बात का, क्योंकि मर्द ज्यादातर बाहर
बिल्कुल
रहते हैं घर
बिल्कुल
से,
सही।
इस बात
इस
का
चीज़
ख्याल
का
रखना
बहरहाल जो है
चाहिए
ख्याल रखना
बिल्कुल।
चाहिए। और उसके अलावा बहरहाल एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि हमारे हफ्ते हमारे जो वो चल रहा है
मुकाबला,
मुकाबला,
जी
जी
मुकाबला
बिल्कुल
हमारा
मुकाबला
चल रहा
जो चल
है
रहा है
नाजी।
हमारा।
मुकाबला ऐसा है कि आपको अपनी रमजान की तस्वीर, अपने शहर, अपने इलाके, इफ्तार, सहरी, जैसे भी आपको लगता है रिवायती तौर पर रमजान मना रहे हैं, हमारे हमें हमारे फेसबुक के एड्रेस पर आप
बिल्कुल
तस्वीरें भेजिए। ईद के दिन मीठी, ईद के दिन हम आपके दिन और भी मीठा बनाएंगे,
बिल्कुल सही,
कुरानदाजी करेंगे, और
बिल्कुल
तीन खुश
जबरदस्त
नसीब जो है उनको जो है इनामत दिए
इनामात
जाएंगे।
भी दिए जाएंगे, बिल्कुल ठीक
बिल्कुल
बात की। और बहरहाल हफ्ते के मौजू के सिलसिले में भी हमारा साथ जो है आप लोग दें, क्योंकि आपके साथ के बगैर बिल्कुल हमें मज़ा नहीं आता। हमारे पास एक ईमेल आई थी भट्टी साहब की, और उन्होंने कहा
अच्छा
था कि मुझे जो है बहरहाल पेट का, पेट में दर्द होता है तो उसका क्या हल है। तो बहरहाल अगर हो सके तो एक बार फिर आप हमें फेसबुक पे या ईमेल करके थोड़ी सी तफसीलात ज़्यादा बयान कर दें कि किस टाइम पे आपको दर्द होता है, ताकि हम जो है अपने
बिल्कुल
डॉक्टर
यार, खाने
हजरात
के
से
बाद, खाने से
बिल्कुल
पहले
खाने से
बिल्कुल
पहले रात के टाइम पे, और दर्द किस किस्म का है, किस जगह
बिल्कुल
पर है, ताकि हम बेहतर तरीके से बहरहाल उसका जवाब आपको दे सकें। ये
सही
तो
है।
हमारी बातें हो गई कि भाई जी आप कुछ कहना चाह
नहीं
रहे
नहीं
हैं।
कुछ कहना नहीं चाहूंगी, मैं
जी
यही सोच रही थी कि हमारे नाजरिन को जब आप भेजते हैं हमें कुछ अपनी बीमारी के बारे में, वजाहत पूरी तरह से
बिल्कुल
किया
सही
करें, क्योंकि
बिल्कुल
हमारे डॉक्टर हजरात जो यहाँ पे जो आते हैं, ताकि उनको पता चले कि वो किस तरह की बीमारी और कहाँ पे है, इस बात
बिल्कुल
का ख्याल आप जरूर रखिए।
बिल्कुल।
बिल्कुल
अच्छा एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था अपने नाजरिक को भी, ये
जी
कि बड़ी दिलचस्प बात थी, लेकिन ये कि बात सुनने के बाद उन्हें पता चलेगा सिर्फ दिलचस्प है, उसमें कोई बारे इतलात कोई खास नहीं है।
अच्छा
बात यह है कि दो किस्म के लोग होते हैं। एक किस्म के लोग हैं जो वर्जिश का उनको पता होता है कि वर्जिश की अहमियत है, लेकिन वो वक्त नहीं निकाल पाते।
बिल्कुल
और दूसरे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी वर्जिश की अहमियत है और वो वक्त निकालते हैं और वर्जिश करते हैं। अब ये इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको कि जो बात में कोई ख़ास इतलात नहीं थी, लेकिन कहने का मकसद ये था कि वर्जिश के लिए टाइम निकालना ज़रूरी
ज़रूरी
है।
है बिल्कुल।
ये
और
ऐसा
खुर्रम एक बात और मैं नाज़रीन को खाली यहाँ बता चलूँ, बात वर्जिश की हुई, वक्त निकालना ज़रूरी है, वर्जिश को सही तरह अंजाम देना
बिल्कुल
भी बहुत
बहुत
ज़रूरी
ज़रूरी
है
है
बिल्कुल।
बिल्कुल। और
कहीं
कभी कोई
ऐसा ना हो
नुकसान
किसी
पड़े,
भट्टों पे खिंचाव पड़ जाए आपके, या
बेशक
कहीं पाँव में दर्द शुरू हो जाए, या कहीं कोई जोड़ जो है वो अपनी जगह से हिल जाए, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिए।
बिल्कुल।
बिल्कुल
कल हमारे साथ खतीजे इकबाल होंगी,
बिल्कुल। और
और
मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है
बड़ा
जी
अहम मौजू
बिल्कुल
उनकी
उनकी
शख्सियत
शख्सियत
के
पर
बारे
जो है
में,
वो रोशनी डालेंगे।
बिल्कुल।
बिल्कुल
और उम्मीद करेंगे कि हमारे नाज़रीन भी इसमें हमारा साथ देंगे। जो सवाल आपके जहन में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, और उनके सिलसिले में आपको सवाल पूछना चाहें या
बिल्कुल
आप कोई इतलात हमें देना चाहें, तो ज़रूर हमारे फेसबुक में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह डॉक्टर खदीजा इकबाल हमारे साथ कल स्टूडियो में मौजूद होंगी। तो रुबाब
बिल्कुल,
और कोई बात आपने करनी है
बस ये
हमारे
दुआ
नाज़?
करना चाहूंगी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा
बिल्कुल
है मेरे
सही
ख्याल से। बिल्कुल बस इस दुआ के साथ कि हमारे अजीज नाजरीन का ये दिन बहुत अच्छा गुजरे, आपको इन गर्मियों में रोजा बिल्कुल ना लगे। बिल्कुल
बिल्कुल। अपना
सही
बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे खुर्रम गर्देजी को और रुबाब मंसूरी को प्रोग्राम सुबह जिंदगी से इजाजत दीजिए। खुदा
खुदा
हाफिज़।
हाफिज़।